जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। बीच में कई उत्सव हुए और इसलिए दो चार क्लास नहीं हो पाए, फिर भी वैष्णव प्रभु ने सारा चौथा अध्याय समाप्त कर लिया। आपको चर्चा की आपके साथ में, और परीक्षा भी दो हुए और परीक्षा के रिजल्ट भी आ गए हैं। आप सब परिचित हैं परिणाम से, अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो पुरस्कार का वितरण अंत में होगा, आज के क्लास के अंत में। परंतु क्या आप सुनना चाहते हैं कि किसके पहले दूसरे तीसरे नंबर में नाम आया है, तो पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर पे हैं शुकप्रिया माता जी, जिनको 147 पॉइंट्स मिले हैं। हरि बोल। दूसरे नंबर पे तीन भक्त हैं जिनको 161 नंबर मिले हैं, और तीन भक्तों के नाम हैं परम करुणा माता जी, हरि विजय प्रभु और सारंग ठाकुर प्रभु। हरि बोल। तो आप तीनों को दूसरा नंबर मिला है 161, और पहले स्थान पर दो भक्त हैं जिनको कि 196 मार्क मिले 196, और उनके नाम है राधाकांत प्रभु और प्रेमनंदिनी माता जी। हरि बोल। तो इस प्रकार से पहले तीन स्थानों में छह भक्त हैं, छह भक्तों को पुरस्कार मिला है। और आप में से जो इस परीक्षा में या इन परीक्षाओं में बैठे थे परंतु आपका नाम नहीं पढ़ाया गया, फिर भी आप जान लीजिए कि आपको भी भगवान की नजर में पुरस्कार मिल गया है, क्योंकि आपने पढ़ाई की और आपने परीक्षा दी, यही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है, और अवश्य भगवान की कृपा आपके ऊपर भी होगी। तो चौथा अध्याय अब समाप्त हो चुका, अभी आज से हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पांचवें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पांचवे अध्याय का विषय है श्री नित्यानंद बलराम। अभी आप जानते हैं कि मंगलाचरण के 14 श्लोकों में पहले 6 श्लोक इनका विषय क्या है, पहले 6 श्लोकों का विषय क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद वाले जो 5 श्लोक हैं उनका विषय है श्री नित्यानंद प्रभु। तो पहले 4 अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले 6 मंगलाचरण के श्लोकों की चर्चा की है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और उसके बाद में आने वाले 5 श्लोकों के की चर्चा उन्होंने एक ही अध्याय में, इस 5वें अध्याय में कर ली है, जिसमें उन्होंने श्री नित्यानंद बलराम का गुणगान किया है। नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए कविराज गोस्वामी ये कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री बलराम है। तो अगर नित्यानंद प्रभु की महिमा की जानकारी हमें होनी है तो अवश्य बलराम तत्व या भगवान बलराम की महिमा भी जानना आवश्यक है। तो ये 5वां अध्याय ये मंगलाचरण के 7वें से लेकर 11वें श्लोक से संबंधित है, और इनमें से जो 7वां श्लोक है वो मुख्य श्लोक है जो यहाँ पे है बोर्ड के ऊपर, और इस 7वें श्लोक की व्याख्या उसके बाद वाले 4 श्लोकों में की है। अर्थात नित्यानंद बलराम के बारे में जो मूल श्लोक है ये 7वां है, मंगलाचरण का 7वां, और मंगलाचरण के 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक में ये 7वें श्लोक की व्याख्या है। तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलराम जी के बारे में बतलाते हैं कि बलराम जी कौन है। तो आप में से कोई पढ़ेंगे कि हम बलराम जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, शुरू से पढ़िए क्योंकि छोटे अक्षरों में है तो पीछे जो बैठे हैं भक्त शायद नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऊपर जो लिखा है वो भी जरा पढ़िएगा।
श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5, श्री नित्यानंद बलराम की महिमाओं का वर्णन, मंगलाचरण श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 तक।
और अगला विषय, अभी जो विषय जिस विषय के बारे में चर्चा होने वाली है वो नित्यानंद बलराम है। तो सर्वप्रथम कविराज गोस्वामी बलराम तत्व का वर्णन करते हैं। बलराम कौन है, आइए पढ़िएगा।
बलराम कौन है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5 चैप्टर 4 एंड 5 श्लोक। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार, श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं। श्री कृष्ण और बलराम एक हैं।
कविराज गोस्वामी कहते हैं
केवल शरीर में अंतर है।
सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तो कृष्ण सर्व अवतारी हैं और स्वयं भगवान हैं, और श्री बलराम कौन है, ताहर द्वितीय देह, उनका दूसरा देह। अर्थात बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक ही स्वरूप तो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। कविराज गोस्वामी कहते हैं वे दोनों एक ही हैं, केवल शरीर में अंतर है, वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। तो बलराम जी के बारे में ये बतलाया जाता है कि बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दो अलग भगवान हैं, एक ही हैं, केवल दो रूप में प्रकट हुए हैं। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। आपको याद होगा कि जब हम पहले अध्याय की चर्चा कर रहे थे तो उस समय प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह की चर्चा हो रही थी। उस समय बात ये निकली कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं और ये सारे विस्तार जब बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, रूप में, आकार में, हर तरह से बिल्कुल वही हैं, तो उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। जैसे कि रासलीला के समय श्री कृष्ण ने अपने विस्तार प्रकट किए। दूसरी ओर कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उनके ये विस्तार कम या अधिक मात्रा में रूप और आकार में अलग होते हैं। ऐसे विस्तारों को विलास विग्रह कहा जाता है। तो बलराम जी श्री कृष्ण के प्रथम विलास विग्रह है। प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे कि बलराम और कृष्ण में अंतर एक ही है, और वो अंतर क्या है? रंग का बस। कृष्ण सांवले हैं और बलराम जी गोरे हैं, बस दोनों में अंतर इतना ही है। इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं एक ही स्वरूप दो हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है, भिन्न मात्र काय, केवल उनका रूप अलग है बस। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रस है। आद्य काय व्यूह, काय व्यूह मतलब उनके शरीर का विस्तार। तो बलराम जी श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं और बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं अनेक तरह से, अनेक रूपों से। आइए उसको घुमाइएगा, उसको उल्टा जर ऐसे घुमाइए ताकि नीचे का जो वो है वो दिखाई पड़े। ठीक है। तो बलराम जी, बलराम तत्व के बारे में और समझने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्टीकरण किया है कि वैसे कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक को स्वांश कला कहते हैं और दूसरे को विभिन्नांश, स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश मतलब भगवान के वो अंश या वो विस्तार जो भगवान की तरह ही पूर्ण शक्तिशाली है। ये शक्तिमान या विष्णु तत्व के श्रेणी में माने जाते हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब इस श्रेणी में आते हैं, स्वांश कला। और दूसरी ओर जो भगवान के अंश विभिन्न हैं, कण मात्र हैं, उनको उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, कण मात्र शक्ति है, वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा विभिन्न अंश कहलाते हैं और भगवान कृष्ण के विस्तार और अवतार वो स्वांश कला कहलाते हैं। तो स्वांश कला भी ये दो प्रकार के होते हैं, स्वांश और कला। भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम स्व अंश या उनका पहला विस्तार होता है उसे स्वांश कहते हैं। तो बलराम जी स्वांश हैं, स्व अंश। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार और अन्य जितने भी भगवान के रूप हैं विष्णु तत्व, वो सब बलराम जी से उत्पन्न होते हैं। बलराम जी इनके उद्गम हैं। तो बलराम जी के अंश होने के नाते ये कृष्ण के अंश माने जाते हैं, इसलिए उनको कला कहते हैं। कला मतलब अंश के अंश। इस प्रकार से स्वांश कला के दो भाग, स्वांश जो कि बलराम है और कला जो कि जितने भी बलराम से आने वाले अन्य विस्तार हैं। तो पढ़िएगा,
कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, इसकी दो भाग है, स्वांश कला और विभिन्न अंश। स्वांश कला के भी दो अंग है, स्वांश यानी बलराम, दूसरा कला यानी बलराम से आने वाले अन्य विस्तार।
तो ठीक है, अभी जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सब इस पहले श्रेणी में आएंगे, स्वांश कला में। ठीक है, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी इसी बात की पुष्टि करते हैं। बार बार प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में ये अंश और कला, इन दो शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं। तो अंश के पहले केवल स्व लगाने का अर्थ ये है कि ये भगवान के सर्वप्रथम विस्तार है और उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वैसे देखा जाए तो जितने भी स्वांश कला हैं, उनमें और भगवान श्री कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल आकार या रूप का। और फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं बलराम जी का बलराम तत्व बतलाने के बाद वो कहते हैं कि भगवान बलराम यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है श्री नित्यानंद बलराम, क्योंकि नित्यानंद और बलराम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, और इसलिए जब कविराज गोस्वामी अब नित्यानंद प्रभु के महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वो बलराम तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए ये भी कहते हैं कि ये बलराम और नित्यानंद एक ही है। तो आइए मंगलाचरण के सातवें श्लोक को हम पढ़ते हैं, जो यहाँ आदि लीला के पांचवें अध्याय का भी सातवां श्लोक है। ये श्लोक यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ बोर्ड पर भी आप इसको पढ़ पाएंगे। तो ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर आने वाले चार श्लोक हैं। संकर्षण कारण तो यशायी गर्भोदशायी च पयोदिशायी शेषश्च यस्यांश कला स नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोदिशायी शेषश्च यस्यांश कलह स नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। बोलेगा दशाई च पयोदिशाई संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोदिशाई शेषश्च यस्यांश कलाश नित्या नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके अंश तथा अंशांश संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। संकर्षण कारण तोयशाई, सबसे पहले संकर्षण, दूसरे कारण तोय, तोय मतलब संस्कृत में तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो तोय मतलब पानी, तो कारण तोई तोय मतलब कारण सागर, शयी मतलब जो शयन करते हैं, तो कारण तोय शाही कौन है, ये कारणोदकशाही विष्णु है। तीसरे गर्भोद गर्भोदशाही, गर्भ उदक शाही गर्भोदक शाही विष्णु, और तीसरे हैं पयोग्धि शाही, पय मतलब पयह दूध, क्षीर सागर में निवास करने वाले या शयन करने वाले क्षीरोदक शाही विष्णु, और अंत में शेष। तो इन चारों के बारे में यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संकर्षण कारणोदकशाय विष्णु गर्भोदकशाय विष्णु क्षीरोदकशाय विष्णु और अनंत शेष, ये पांचों ही, ये पांचों के पांच क्या हैं? यस्य अंशः कलाः, या तो अंश हैं या कला, कला मतलब अंश के अंश, किनके? नित्यानंद आख्य रामः, नित्यानंद प्रभु के ये अंश हैं या तो उनके कला हैं, और ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु के शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। शरणम ममास्तु, मम अस्तु। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का परिचय देते हैं। वैसे केवल गौड़ीय वैष्णव ही नित्यानंद प्रभु को मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को भी अन्य कई नहीं मानते, परंतु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री कृष्ण और बलराम हैं, ये चैतन्य चरितामृत में सिद्ध होता है। आगे कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि बलराम जी तो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ वो अन्य पांच रूप भी ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसको घुमाएंगे कृपया। गोलोक वृंदावन में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, कोई बतलाएंगे? गोलोक वृंदावन में, हाँ जी, सखा रूप में सेवा करते हैं कैसे? नहीं, सखा रूप में कैसे सेवा करते हैं? साथ में जाते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं, तो जैसे अन्य सखा श्री कृष्ण के पास के साथ में क्रीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं, वैसे बलराम भी करते हैं। और बताइए, जितने भी सामग्री भगवान श्री कृष्ण के हैं गोलोक वृंदावन में, उनकी शैया, उनके आभूषण, उनके कपड़े, उनकी बांसुरी, ये सब भगवान बलराम की व्यवस्था है, उनका मैनेजमेंट है, सब वही सब व्यवस्था करते हैं श्री कृष्ण के आनंद के लिए, उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं। साथ साथ में बड़े भाई होने के नाते वात्सल्य भाव में भी कभी कभी वो श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं। माता यशोदा कभी कभी कहा करती थी कृष्ण से कि देखो अकेले नहीं जाना, साथ में अपने बड़े भाई बलराम को लेकर जाना, और बलराम से कहती थी कि देखो तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण की रक्षा करना, कहीं उसे कोई चोट न पहुंचे। तो इस प्रकार से बड़े भाई होने के नाते बलराम जी श्री कृष्ण का देखभाल भी करते थे वात्सल्य भाव में। और अंत में अनंग मंजरी गोपी के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं और माधुरी रस से भी कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में तो सेवा करते ही हैं, जब श्री कृष्ण थक जाते हैं और गाय गोचारण कर लीला करने के बाद और क्रीड़ा करने के बाद थक के थोड़ा एक वृक्ष के मूल पे वो शयन करते हैं, तो बलराम जी भी साथ में जाके श्री कृष्ण के चरणों को दबाते हैं, मालिश करते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, कभी कभी चामर वगैरह से उनको हवा देना दिलाते हैं। तो पांचों ही रसों में बलराम जी गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। परंतु ये हुई बात केवल गोलोक वृंदावन की, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बलराम से के कृष्ण की सेवा अन्य पांच तरीकों से भी करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धारी कौरे कृष्ण रसेवन, पंच रूप धारी कौरे कृष्ण रसेवन, तो पांच रूपों को धारण करते हैं बलराम जी, अपने स्वयं बलराम के रूप के अलावा और पांच रूप धारण करते हैं, किस लिए? कृष्ण रस सेवन, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। और यही बलराम जी मूल संकर्षण हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि भगवान के चतुर्व्यूह हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके बारे में विस्तार में हम अगली बार सुनेंगे। परंतु बलराम से जो विस्तार होते हैं वो है संकर्षण, और संकर्षण ही फिर आगे चल के सारे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का देखभाल करते हैं। तो ये कौन से पांच विस्तार हैं बलराम जी के, जिनसे कि वो श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में दोनों में सेवा करते हैं? पढ़िएगा, पांच कौन से रूप हैं वो बलराम जी के?
कृष्ण की सेवा के लिए बलराम के पांच अन्य रूप वो हैं, प्रथम महासंकर्षण, द्वितीय करुणोदक्षायी विष्णु, तृतीय गर्भोदक्षायी विष्णु, चतुर्थ शेष क्षीरोदक्षायी विष्णु, और पंचम है शेष।
अच्छा, अब ये बताइए संक्षेप में, गर्भोदक्षायी विष्णु, कारणोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु कौन है? आप में से कौन बताएंगे जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है? ये हमारे लिए बहुत प्राथमिक ज्ञान है, अभी हम चैतन्य चरितार्थ पढ़ने जाएंगे, इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोई बताइए हाथ ऊपर करके। हाँ जी बताइए। बहुत अच्छा। कारणोदक्षायी विष्णु महाविष्णु हैं, जो कि कारण सागर में शयन करते हैं और उनके रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत के जो ब्रह्मांड हैं, वो उत्पन्न होते हैं। अर्थात महाविष्णु इस भौतिक सृष्टि के उद्गम हैं। ये कारण सागर है कहाँ बताइए?
आध्यात्मिक जगत में,
आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के तट में। तो ये है महाविष्णु या कारणोदक्षायी विष्णु। फिर गर्भोदक शायद विष्णु कौन है? हाँ बताइए, माइक दीजिए यहाँ पर।
गर्भोदक शायद विष्णु ये गर्भोदक सागर में रहते हैं और जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं।
बहुत अच्छा, लेकिन ये गर्भोदक सागर है कहाँ? कौन से ट्रेन से हम वहाँ जा सकते हैं?
वो
कोई फ्लाइट है, ट्रेन है वहाँ जो जा सकती है? कहाँ है? है ऐसा कोई स्थान कि काल्पनिक है? आजकल बहुत बड़ा विषय दिल्ली में चल रहा है, शायद आपने सुना होगा या नहीं, पता नहीं। हम जब आ रहे थे सूरत से तो हम कई लोग चर्चा कर रहे थे, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा रखा है कि राम, भगवान राम नाम के व्यक्ति रहे नहीं इतिहास में, ये सब काल्पनिक है, ऐसे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, ये कोई समस्या चल रही है रामेश्वर के पास में एक सेतु के बारे में, जो प्रभु रामचंद्र जी ने जब एक सेतु बनाया था, पुल बनाया था लंका तक, जब वानर सेना ने पत्थर फेंक के, बड़े बड़े पत्थर फेंक के एक सेतु बनाया था, तो कई लोग कहते हैं कि वो सेतु अभी भी है, वो दिखाई पड़ता है, और भारत सरकार वहां कुछ करना चाहती है, दूसरा कोई कार्य करना चाहती है, जहाजों को आने जाने के लिए कोई व्यवस्था करना चाहती है, तो कई लोग विरोध करते हैं कि ये वही सेतु है, इसलिए इस इलाके में कुछ नहीं किया जाए, और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, और अभी सरकार ने ये मुद्दा रखा कि राम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, तो फिर ये सेतु कहां से आएगा? तो इसके ऊपर बहुत भयानक अभी बात उत्पन्न हो गया है, अभी सरकार ने इस बात को पीछे ले लिया। तो देखिए आजकल ये जमाना है, जो सरकार जो कि धर्म की रक्षा जिनको करनी चाहिए, वही लोग कहते हैं कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है ही नहीं ऐसे व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी इसी अध्याय के एक जगह तात्पर्य में कहते हैं कि आधुनिक काल में मनुष्य समाज में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? प्रभुपाद जी बतलाते हैं, आपका मत क्या है, सबसे बड़ी बीमारी आजकल मनुष्य समाज में क्या है, आप बताइए। हाँ, कॉलेरा, टाइफाइड, क्या बता रहे हैं? अविश्वास। किस चीज में अविश्वास? शास्त्रों में अविश्वास। बहुत अच्छा, ये जो आजकल तथाकथित भयंकर बीमारियां हैं, जैसे एड्स हैं और बड़े बड़े बीमारियां हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल आम आदमी जो है वो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखता है, सबको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। फिर आते आते हम अखबार में पढ़ रहे थे कि कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब तक कि हम राम के समय के कोई चीजों को अपने आंखों से देखते नहीं हैं, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते कि राम नाम के कोई व्यक्ति रहे हैं इतिहास में, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र रहे कितने साल पहले, इसकी उनको कल्पना नहीं है। वो सोचते हैं कि राम रहे भी होंगे तो 5000 वर्ष पहले रहे होंगे, लेकिन 5000 वर्ष पहले तो कलयुग की शुरुआत हुई। तो आजकल के ये जो वैज्ञानिक आदि हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है वास्तव में, और शास्त्र में कोई भी विश्वास नहीं है, और आजकल विज्ञान का इतना प्रधान स्थान हो गया, प्राधान्य हो गया है कि हर एक आदमी सोचता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, और जो वैज्ञानिक बोलते हैं वही सत्य है, परम सत्य है। तो आजकल के शास्त्र भागवत और गीता न होकर वो विज्ञान के किताब हो गए हैं, और ये वैज्ञानिक आजकल के समाज के गुरु हो गए हैं, इसलिए वो जो कहते हैं लोग मान लेते हैं, भले ही उनकी बातें वो बदलते रहे हर दिन, उनके जो बातें हैं, उनके थियोरीज जो हैं, उनके नियम हैं, वो बदलते रहते हैं, आज कुछ कहते हैं कल कुछ और कहते हैं, फिर भी लोग मानते जाते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मनुष्य समाज को आगे प्रगति करनी है तो उनको शास्त्र में विश्वास रखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य समाज का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। तो गर्भोदक सागर ये कहाँ है, किसी वैज्ञानिक को पूछिए वो कहेगा ये तो सब दंत कथा है, ऐसे कोई सागर है ही नहीं। सागर तो केवल जो पृथ्वी लोक के ऊपर दिखाई पड़ता है बस वही सागर है थोड़े बस। लेकिन भागवत में बताया गया है कि नहीं, इसके अलावा भी एक सागर है, बहुत बड़ा सागर है। ये कहाँ है सागर बताइए? ये ब्रह्मांड के भीतर है। ये ब्रह्मांड का जो आकार है वो एक अंडे के समान है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म अंड। और इस ये आधा अंडा जो है अंदर से जल से भरा हुआ है, गर्भ उदक। गर्भ उदक ये किस प्रकार का जल है? ये जल आया कहाँ से, कहाँ से आया ये जल बताइए? हाँ, ये भगवान का दिव्य पसीना है। भगवान के पसीने में और हमारे पसीने में बहुत अंतर है। भगवान का पसीना जो है दिव्य है, दिव्य जल है ये। हमारा पसीना दिव्य नहीं होता। तो भगवान महाविष्णु के रोम कूपों से जब अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तो वही महाविष्णु अपने आप को विस्तार करके हरेक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और इस विस्तार को गर्भोदकशायी विष्णु कहते हैं। तो कितने गर्भोदकशायी विष्णु हैं? जितने ब्रह्मांड हैं उतने गर्भोदकशायी विष्णु हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। इसका मतलब है कि अनंत कोटि गर्भोदकशायी विष्णु हैं। तो हरेक ब्रह्मांड के भीतर भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। पहले तो अंदर कुछ होता नहीं है, खाली होता है। फिर भगवान आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं जो उनके शरीर से उत्पन्न होता है और उसी जल में अनंत शेष के ऊपर, अनंत शेष उनके शैया बन जाते हैं, उनके ऊपर शयन करते हैं और फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उस कमल के भीतर फिर 14 भुवन होते हैं। सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, वो उस ब्रह्मांड के भीतर उस कमल डंडे के अंदर स्थित होते हैं। तो ये है गर्भ उदक शाही विष्णु। और फिर तीसरे कौन से हैं? क्षीरोदक शाही विष्णु। क्षीर उदक शाही मतलब दूध का सागर। किसी आदमी को, आम इंसान को, आदमी को जाके सड़क पे कहिए कि दूध का भी सागर होता है तो वो हंसेगा। यहाँ तो दूध की इतनी कमी है, दूध में इतनी मिलावट है आजकल, तो वो लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी हो सकता है कि दूध का सागर होता है। लेकिन है, ये भी शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि हमें शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। चक्षु मतलब आंखें, शास्त्रों के दृष्टि से देखना चाहिए। शास्त्रों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस ज्ञान के दृष्टि से हमें देखना चाहिए, न कि केवल हमारे इन स्थूल आंखों से। इन स्थूल आंखों की कोई शक्ति नहीं है देखने के लिए। हम यहाँ बैठे हैं तो दीवार के उस पार क्या चल रहा है हम इन आंखों से देख नहीं सकते, हमें ज्ञान नहीं मिलता। परंतु शास्त्रों से हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जो कि इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियों से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा सागर है, दूध का सागर है, जो कि ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में है। इसको क्षीर सागर कहते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि गर्भोदकशायी विष्णु के विस्तार हैं। और वही क्षीरोदकशायी विष्णु हैं जो कि हरेक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये तीनों विष्णु जिनको पुरुष अवतार कहते हैं, साथ साथ में महासंकर्षण और शेष, ये पांचों बलराम जी के विस्तार हैं और ये भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। इनमें से जो पहले चार हैं वो सृष्टि के के कार्य में वो सहायता करते हैं। महासंकर्षण तो सदैव वैकुंठ जगत में स्थित होते हैं, और अन्य तीन जो हैं, तीन विष्णु पुरुष अवतार, वो इस भौतिक जगत से संबंधित हैं। संकर्षण ये बलराम जी के प्रथम विस्तार माने जाते हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं कविराज गोस्वामी के शब्दों में, बलराम जी मूल संकर्षण है, और उनसे सर्वप्रथम और एक संकर्षण उत्पन्न होते हैं जिनको महासंकर्षण कहा गया है। तो ये महासंकर्षण कौन है बताइएगा, कौन है महासंकर्षण? बलदेव जी या बलराम जी के प्रथम विस्तार हैं, और उनसे अनेक अन्य विस्तार आते हैं, जैसे वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे नारायण आते हैं, फिर उन नारायण से फिर से दोबारा ये चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, और ऐसे होते होते फिर आगे ये संकर्षण से फिर ये महाविष्णु आते हैं जो कि भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये सारी जानकारी श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों में दी गई है। आजकल वैज्ञानिक सृष्टि की रचना के बारे में बहुत कुछ ढूंढ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ निश्चित रूप से जान नहीं पा रहे हैं। उनकी राय, उनके मत हर दिन बदलते रहते हैं, और 100 साल पहले जो वो सोच रहे थे आज के विचार में और उस समय के विचार में बहुत अंतर है, लेकिन शास्त्रों के मत में कभी अंतर नहीं होता, बदल नहीं होता। तो ये ज्ञान प्राचीन है, परम सत्य है। तो हर बार जब सृष्टि की रचना होती है तो इसी प्रकार से होती है, भगवान अपने तौर तरीके बदलते नहीं है, उसी पद्धति से, उसी सिस्टम से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये पहले महासंकर्षण है जो आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं, और जितने भी चीजों की स्थापना करनी होती है आध्यात्मिक जगत में वो महासंकर्षण से होता है, और उसके बाद जो तीन पुरुष अवतार हैं वो भौतिक जगत का कार्य संभालते हैं, और अंततः शेष वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं। इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, अपने कारण कृष्ण लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चारिकाय। तो वो तो स्वयं श्री कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, और साथ साथ अन्य चार रूपों में वो सृष्टि लीला का कार्य भी संभालते हैं। हाँ, जरा घुमाइएगा। तो फिर से यहाँ उसी बात को बतलाया गया है जो पहले कह चुके हैं, पढ़िएगा।
मंगलाचरण का शीर्ष श्लोक 7 से 11 तक नित्यानंद प्रभु का वर्णन करता है। श्लोक 8 से 11 तक व्याख्या करता है। श्लोक 7 का
बस ठीक, वही बात कि नित्यानंद प्रभु के बारे में ये 5 श्लोक हैं, 7 से 11 नंबर मंगलाचरण के श्लोक, 7वां श्लोक मुख्य श्लोक है, 8वें से 11वें श्लोक ये क्या है, ये केवल 7वें श्लोक की व्याख्या है। तो अभी यहाँ 8वें श्लोक का वर्णन है, तो आइए पढ़ते हैं ये 8वां श्लोक है क्या। ये 8वें श्लोक में विशेष करके आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, और आध्यात्मिक जगत में भगवान के कौन से मुख्य रूप से विस्तार हैं उनका वर्णन है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। तो आइए ये श्लोक पढ़ते हैं।
मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके
चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्योद्धाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये पढ़िएगा मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह जिसमें वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित हैं के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो इस आठवें मंगलाचरण के आठवें श्लोक की व्याख्या पांचवें अध्याय के चौदहवें श्लोक से लेकर आगे करीब करीब 35 श्लोक तक केवल इस श्लोक की व्याख्या कविराज गोस्वामी करते हैं और वो समझाते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक और धाम है, एक और आकाश है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त्यात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि हे अर्जुन, ये जो भौतिक जगत है जिसका वर्णन मैं तुम्हें संक्षेप में कर चुका हूँ, इस भौतिक सृष्टि के परे भी एक और सृष्टि है, लेकिन उस सृष्टि में और इस सृष्टि में अंतर है। अंतर क्या है कि इस सृष्टि का समय समय पर नाश होता है, सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, विनाश होता है और ये बारंबार चलते रहता है, परंतु उस जगत का नाश कभी नहीं होता है। वो शाश्वत जगत है, शाश्वत धाम है और वो मेरा धाम है। हे अर्जुन, यद गत्वान अंगवर्तन्ते तद धाम परम मम। कि जो उस धाम को पहुंच जाता है, प्राप्त करता है, हे अर्जुन, वो पुनः इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आता है। तो कविराज गोस्वामी इसी बात को कहते हैं कि भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक आकाश है जिसको पर व्योम कहते हैं। व्योम मतलब आकाश, आसमान। व्योमासुर नाम का असुर था ना, जिसका वध कृष्ण ने किया था, याद है? तो व्योम मतलब आसमान और परव्योम मतलब वो आसमान या वो जगत जो कि इस आसमान से, इस सृष्टि से, इस भौतिक जगत से परे है। तो उस परव्योम में क्या है आइए देखते हैं, जरा घुमाइएगा चार्ट। उस आध्यात्मिक जगत में क्या है, वो भगवान का धाम है, इसको वैकुंठ जगत कहते हैं। तो इस वैकुंठ जगत में क्या है, हाँ इसके बारे में तो हम कह चुके हैं, ठीक है आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा फिर आगे हम घुमाते हैं।
मंगलाचरण का 8वां श्लोक अर्थात चैतन्य चरितामृत आदि का 5वां अध्याय का 13वां श्लोक संख्या 14 से लेकर के 49 में वर्णन किया गया है, जिसका विषय आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के चतुर्व्यूह विस्तार का वर्णन है।
ये आपके अभ्यास के लिए, जब आप अध्ययन करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मदद करेंगी। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत वहां पे क्या है आइए पढ़िएगा।
आध्यात्मिक जगत परव्योम,
आध्यात्मिक जगत को परव्योम भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताइए, आध्यात्मिक जगत को परव्योम क्यों कहते हैं, हाँ बताइए क्योंकि वो इस भौतिक जगत से परे है, वो एक व्योम है, एक आकाश है, एक आसमान है, एक जगत है, इसीलिए इसे पर व्योम कहते हैं। तो ये वैकुंठ जगत, भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत, ये सब एक ही है। तो ये पर व्योम में क्या है पढ़िएगा।
पर व्योम में है वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक और ब्रह्मा,
निराकार ब्रह्म,
निराकार ब्रह्म।
तो इस परव्योम में सर्वप्रथम अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। जिस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड के भीतर इतने सारे लोक हैं, इतने सारे ग्रह हैं कि हम इनकी गणना नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से भगवान के धाम में उस परव्योम में अनेक लोक हैं, जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं। वैकुंठ जगत वो जगत है जहाँ कोई कुंठ नहीं है, जहाँ कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, लेकिन ये जगत है ये सकुंठ है। इस जगत में तो केवल दुख है, केवल तनाव, केवल क्लेश, परंतु उस जगत में वैकुंठ में ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये वैकुंठ लोक हैं, अनेक वैकुंठ लोक पाए जाते हैं वहां पर अनगिनत। और इन वैकुंठ लोक जो हैं, ये भौतिक तत्वों से नहीं बने हुए होते हैं। यहाँ इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर जितने भी ग्रह हैं, लोक हैं, वो जड़ पदार्थों से बने हुए होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि, अग्नि। जैसे सूर्य लोक कौन से तत्व से बना हुआ है, अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व का प्राधान्य सूर्य लोक में है। पृथ्वी लोक में कौन से तत्व का प्राधान्य है, जल और पृथ्वी, जल 70% है और 30% पृथ्वी है और अन्य चीजें हैं, हवा भी है, ज्यादा जलवायु, जल तत्व जो है वो अधिक माना जाता है। तो जो भी है, इन तत्वों से, इन स्थूल तत्वों से इस भौतिक जगत के ग्रह या लोक बने हुए हैं, परंतु ये वैकुंठ लोक, वैकुंठ जगत में जितने भी लोक हैं, ये सब चिन्मय हैं, इन जड़ पदार्थों से नहीं बने हुए हैं। चिन्मय का मतलब है कि वो सब प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान है, वो सब चेतन है। यहाँ ये मिट्टी है साधारण, कहीं बंबई दिल्ली में जाइए, वो मिट्टी चेतन नहीं है, वो जड़ होता है, परंतु वैकुंठ जगत में हर एक कण चेतन होता है। तो अनेक वैकुंठ लोक होते हैं, और इन अनगिनत वैकुंठ लोकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण लोक है उसे कृष्ण लोक कहते हैं। जैसे भारतवर्ष में अनेक शहर हैं, लेकिन इन सारे शहरों में से सबसे महत्वपूर्ण शहर राजधानी है जो नई दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ लोकों में अनेक वैकुंठ लोक हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण लोक। ये भी एक लोक है, ये भी एक ग्रह है परव्योम में, और ये सारे लोक चाहे कृष्ण लोक हो या अन्य वैकुंठ लोक हो, वो तैर रहे हैं। समझ लीजिए किस में तैर रहे हैं, निराकार ब्रह्म में। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, वो तैर रहे हैं, किस में तैर रहे हैं, सूर्य के किरणों में। यहाँ इस ब्रह्मांड के भीतर सूर्य के किरण सर्वव्यापी हैं, है ना? ऐसा कोई इलाका नहीं है ब्रह्मांड के भीतर जहाँ की सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही हों। तो जिस प्रकार से सूरज की किरणें इस ब्रह्मांड के भीतर कोने कोने में फैली हुई हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में पर व्योम में ये भगवान का निराकार जो ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म ज्योति है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह फैली हुई है। इसलिए आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है इस निराकार ब्रह्म की वजह से। तो ये निराकार ब्रह्म है क्या? ये निराकार ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति है, जैसे भी हम पहले भी सुन चुके हैं। तो परव्योम में ये तीन चीजें हैं, कौन से हैं बिना देखे हुए बताइए, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक और ब्रह्म ज्योति या निराकार ब्रह्म। तो कृष्ण लोक और वैकुंठ लोक में अंतर क्या है? नहीं, अभी तक जो कहा है उसके बारे में केवल। कृष्ण लोक और वैकुंठ लोक को का भेद क्यों किया हुआ है यहाँ? हाँ, क्योंकि समस्त वैकुंठ लोकों में से सर्वोच्च लोक कृष्ण लोक है, इसलिए यहाँ दोनों का भेद किया हुआ है। हालांकि कृष्ण लोक भी वैकुंठ लोक है एक प्रकार का, परंतु इसमें कोई विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उनको एक अलग ही श्रेणी में रखा गया है। तो इस कृष्ण लोक की चर्चा करते हैं अभी। हाँ, कृष्ण लोक में क्या है पढ़िएगा।
परव्योम का सर्वोच्च क्षेत्र कृष्ण लोक है। कृष्ण लोक में तीन भाग हैं, द्वारका, मथुरा और गोकुल।
अभी चर्चा हो रही है कृष्ण लोक की, जो कि परव्योम का सर्वोच्च क्षेत्र है, और कविराज गोस्वामी यहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि इस कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, और तीन भाग कौन से हैं बिना देखे हुए बताइए, अभी द्वारका, मथुरा और गोकुल। तो फिर अगला प्रश्न ये आता है कि अरे ये तो भारतवर्ष में है, तो ये परव्योम की बात कहाँ हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। द्वारका, मथुरा, गोकुल तो यही है ना, तो फिर ये परव्योम की बात क्या हो रही है? ठीक है, आगे चल के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस कृष्ण लोक के तीन भाग द्वारका, मथुरा और गोकुल, तो इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है बताइए? गोकुल। क्यों गोकुल सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं, सबसे मधुर लीलाएं गोकुल में होती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि द्वारका, मथुरा में भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। द्वारका मथुरा में भी भगवान कृष्ण की लीला अवश्य हो रही है। नोट कीजिए कि हम वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, हो रही है मतलब अभी भी हो रही है, परंतु इन लीलाओं में उतना माधुर्य नहीं है जितना कि गोकुल की लीलाओं में है। तो ये गोकुल के कई नाम हैं कविराज गोस्वामी कहते हैं, घुमाइए गोकुल के कौन से अलग अलग नाम हैं, आइए सुनते हैं, पढ़िएगा।
गोकुल के अन्य नाम व्रज, गोलोक, श्वेत द्वीप, वृंदावन।
तो जब हम गोकुल कहते हैं, कृपया ये मत सोचिए कि हम यहाँ से पास में रमण रीति की बात कर रहे हैं, जो पास वहाँ वो है। गोकुल के कई नाम है, व्रज व्रज भूमि, गोलोक श्वेत द्वीप और वृंदावन, या तो फिर गोलोक वृंदावन भी कहते हैं। अब यहाँ जो श्वेत द्वीप नाम है, हमें जानना चाहिए कि दो श्वेत द्वीप हैं। आप में से कोई बता सकते हैं कौन से ये दो श्वेत द्वीप? दो प्रकार के श्वेत द्वीप होते हैं, बहुत अच्छा। तो इस हर एक भौतिक ब्रह्मांड के भीतर, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, क्षीरोदकशायी विष्णु दूध के सागर में शयन करते हैं। तो ये दूध का सागर जिस लोक पे स्थित है उसे श्वेत द्वीप कहते हैं। ये भी एक वैकुंठ लोक है जो कि भौतिक जगत के भीतर है। हालांकि साधारणतः जितने भी लोक इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर हैं, वो सब नश्वर हैं, वो सब जड़ पदार्थों से बने हुए हैं, फिर भी ऐसे भी हर एक ब्रह्मांड के भीतर एक लोक होता है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, जिसमें एक दूध का सागर होता है। और इस दूध के सागर में ये द्वीप है, श्वेत द्वीप, इसमें क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं। तो ये भौतिक ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ लोक है, तो ये एक प्रकार का श्वेत द्वीप है। और दूसरा श्वेत द्वीप मूल श्वेत द्वीप है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, या व्रज भूमि कहलाता है, गोकुल या गोलोक या वृंदावन कहलाता है, जो कि कृष्ण लोक का एक भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आगे तो इस गोलोक वृंदावन का या गोकुल का या व्रज का या वृंदावन का वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने किया है। तो क्या वर्णन किया है ब्रह्मा जी में, संक्षेप में हम पढ़ेंगे। आप में से जो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। तो आइए संक्षेप में गोलोक वृंदावन का वर्णन सुन लेते हैं।
गोलोक वृंदावन ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल हजार पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। गोकुल के भीतरी भाग में श्री कृष्ण की रहने की विशद व्यवस्था है, जहां वे नंद यशोदा जैसे नित्य संगियों के साथ रहते हैं।
तो अभी अपने शब्दों में बताइए कि गोलोक वृंदावन का क्या वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में। हाँ जी, कोई हाथ ऊपर कीजिए, माइक बिना देखे हुए अब बताइए, माइक देते जाइए।
हरे कृष्णा बाबू जी, ब्रह्म संहिता के श्लोक के हिसाब से बताऊं?
ठीक है,
विंशतम श्लोक है, गोलोक नाम निधाम नितल्य तस्य देवी महेशु हरिधामेशु तेषु तेषु।
नहीं, यहाँ यहाँ अभी जो वर्णन हुआ गोलोक धाम के बारे में, अभी अभी जो हमने कहा, क्या सुना आपने गोलोक वृंदावन के बारे में, कैसा है गोलोक वृंदावन?
गोलोक वृंदावन में मतलब भगवान का जो गोलोक वृंदावन, भगवान के जो अपने जैसे कि नंद यशोदा और जो उनके नित्य पार्षद जो है उनके भगवान की सेवा में।
हाँ, दिखने में कैसा है गोलोक वृंदावन? दीजिए माइक यहाँ दीजिए, हाँ यहाँ दीजिए माइक। गोलोक वृंदावन कैसे दिखता है?
हजार पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प की तरह दिखता है वो।
बहुत अच्छा, और भी विस्तार में वर्णन। और इसके बिल्कुल अंदर के हिस्से में कौन रहते हैं, कौन निवास करते हैं बिल्कुल भीतर?
यशोदा नंद महाराज के साथ भगवान उनके पार्षदों के साथ निवास करते हैं।
यशोदा माता, नंद महाराज और कौन कौन रहते हैं, किनके साथ में रहते हैं? कृष्ण के साथ।
कृष्ण के साथ,
ये कृष्ण का निवास स्थान है, निजी निवास स्थान। और इस कमल पुष्प, ये आध्यात्मिक, इस आध्यात्मिक कमल पुष्प को घेरे हुए श्वेत द्वीप है। तो और भी विस्तार में हम इस समय वर्णन नहीं करेंगे। तो ये है गोकुल या गोलोक या गोलोक वृंदावन या श्वेत द्वीप, इसका वर्णन। हजार पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प है जिसके बीच में श्री कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के संग निवास करते हैं नित्य रूप से, और वहाँ लीला करते हैं। तो फिर उस गोलोक वृंदावन में और इस वृंदावन में कोई अंतर है क्या? आइए पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा।
आध्यात्मिक जगत का गोकुल धाम भौतिक जगत में प्रकट होता है, यह मूल गोकुल से अभिन्न है।
हाँ, तो वही गोकुल या वही गोलोक वृंदावन जो पर व्योम में है, जो आध्यात्मिक जगत में है, वो यहाँ भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, कौन प्रकट कराते हैं? भगवान कृष्ण प्रकट कराते हैं अपने धाम को। यह मूल गोकुल से अभिन्न है, इसका मतलब है कि यहाँ जो वृंदावन है जिसमें हम सब इस समय हैं, बैठे हुए हैं इस वृंदावन में और उस पर व्योम वृंदावन में, कोई अंतर है या नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी रिक्शा वाले हैं और वहाँ भी बंदर हैं, हैं? रिक्शा वाले भले ना हो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जिस वृंदावन को हम अब देख रहे हैं वो बाहरी वृंदावन है, लेकिन जब हमें प्रेम नेत्र प्राप्त हो जाएंगे तब हम असली वृंदावन को देख पाएंगे। तो इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। हाँ, घुमाइए। पढ़िए।
पर व्योम वृंदावन तथा भौम वृंदावन समान है।
हाँ, एक मिनट। तो दोनों वृंदावन हालांकि समान है, बिल्कुल एक समान, कोई अंतर नहीं, फिर भी क्योंकि ये एक गोकुल या एक वृंदावन भौतिक जगत के भीतर प्रकट हुआ है, इसलिए दोनों में भेद करने के लिए उस मूल गोकुल वृंदावन को हम पर व्योम वृंदावन कहते हैं, और यहाँ जो वृंदावन है जिसमें हम इस समय उपस्थित हैं इसे हम भौम वृंदावन कहते हैं। जो वृंदावन भूमि पे प्रकट हो चुका है उसे भौम वृंदावन कहते हैं। हाँ, पढ़िएगा।
दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। भौम वृंदावन को प्रेम के चक्षु द्वारा समझा जा सकता है।
इसका मतलब है कि अब जब हम वृंदावन में निवास कर रहे हैं हम अनेक चीजें देखते हैं, सुनते हैं, जिससे शायद हमें लगे कि अरे वृंदावन में ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्या परम व्योम वृंदावन में भी ऐसे होता है? नहीं। तो अगर हमें वास्तव में असली वृंदावन को देखना है, तो जैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम के चक्षु द्वारा इस धाम को समझने का प्रयास करना चाहिए। तब हम वास्तव में जान जाएंगे कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने आध्यात्मिक जगत का काफी वर्णन किया है और आगे भी इस वर्णन को वो जारी रखेंगे। तो अगली बार हम सुनेंगे कि वहाँ उस वैकुंठ जगत में और क्या हो रहा है, कैसे उस वैकुंठ जगत का व्यवस्थापन हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी पुरस्कार का वितरण, वैष्णव प्रभु ने परीक्षा ली थी पिछली दो बार, तो हम निवेदन करेंगे वैष्णव प्रभु इस पुरस्कार को बांट दें। हम नाम पढ़ेंगे।